is a lecture on Udo Sandesh, Brahmar Geet from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 47, verses 9 to 10, on the topic of the mind, body, and deeds of the gopis are fully absorbed in Krishna. This lecture is given by His Holiness Radha Govindadas Goswami in Khadia, India, on 27th of December 1998 and 1999.
Iti gopyo hi govinde gatva kaya manasaha Krishna dute vrajam jate Uddhave tyakta laukikaha Gayantyah priyakarmani Rudantyascha gatahriyaha Tasya sansmritya Jani kaisor balyayoh Iti gopyo hi govinde gatava kaya manasaha Krishna dute vrajam jate uddhave tyakta laukikaha Gayantah priyakarmani rudampyascha gatahriyaha Tasya sansmritya jani kaisor balyayoh इस प्रकार जब कृष्ण के दूत उद्धव जी ब्रज में आए उस समय गोपियां केवल रोती ही रोती रहती थी। गत हृय हो गई, ये पहला वाक्य है इसमें। उद्धव जी के जाने पर उनकी लज्जा बिल्कुल चली गई, इतना विरह का उन्माद और बढ़ा, कृष्ण की इतनी याद और बढ़ गई कि वे क्या बोल रही हैं, क्या कह रही हैं, कैसे क्या कर रही हैं, इसका कोई ध्यान नहीं रह गया। कृष्ण में, गोविंद में गत वा काय मानस, वैसे तो पहले से ही गोविंदा पर हृतात्मानो, पहले से ही कृष्ण में उनका मन था, लेकिन उद्धव जी के ब्रज में जाने पर जो दशा गोपियों की हुई वो विलक्षण हुई। और समय कृष्ण दूते ब्रजम उद्धवे ब्रजम जाते, कृष्ण दूते समागमात जासाम एवं भूता दशा जाता तासाम प्रिय समागम संभाविता दशा तो वाचा मत के गोचर सुता। जब प्रिय का दूत आया है तब तो गोपियों की यह दशा हो गई। सुखदेव गोस्वामी का यह भाव है, कृष्ण दूत के आने पर जब यह दशा हो गई तो प्रिय जिस दिन ब्रज में आएंगे उस दिन क्या दशा होगी, इनकी वाणी का और मन का और शरीर का आवेश कितना अधिक कृष्ण में होगा। दूत के आने पर तो ये दशा हो रही। कृष्ण दूते उद्धवे ब्रजम याते ही जो जब इति इस प्रकार एतद् वदन्ति इत्यर्थ, इस प्रकार से वो बोल रहे थी इत्यं त्यक्त लौकिका अर्थवा इति एवं त्यक्त लौकिका। प्रश्न उठ सकता है क्या ये बक रही है, एक पुरुष के सामने उद्धव जी के सामने हो इस प्रकार की बातें कहना ये उचित नहीं है। इसी का उत्तर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो त्यक्त लौकिका, वो लोक धरातल से बिल्कुल ऊपर थे, लोक इसको नहीं समझ सकता। तो इस तरह से उद्धव जी के सामने प्रकट हो रही है पूर्वमेव गोकुलेन्द्र श्लेषण सर्वेन्द्रीय व्यापके, गोविंद का अर्थ है गोकुलेंद्र अथवा सर्वेंद्रिय व्यापक, गोविंद जो समस्त इंद्रियों में छा गए। गतो वाक काय मानस गतानी वागादिनी जासामता, उनके वचन शरीर और मानस सब गोविंद में चले गए थे। गत गोविंदे गत गोविंद में चले गए, इसका अर्थ है वे वाणी से केवल गोविंद का वर्णन कर रही थी, शरीर से ऐसी चेष्टा कर रही हैं कि उनकी सेवा कर रही हैं, उनके साथ नाच रही हैं, उनको खिला रही हैं, झूला झूला रही हैं, शरीर की ऐसी दशा हो रही थी। शरीर प्रकट में ऐसा था लगता था कि कृष्ण की सेवा कर रही हैं या कृष्ण बन गई हैं, कृष्ण जैसे बांसुरी बजाते हैं तो वैसे वे बजाने लगती थी। उद्धव जी ने देखा कि गोपियों का जो शरीर है कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, ऐसा भाव हो रहा है और कृष्ण बन गई हैं, कृष्ण लीला कर रही। इसको काय जाना कहता है, मानसा और मन। तो गोपियों के प्रेम को समझना है, यह निश्चित हो गया, इनके मुख से ही सिद्ध हुआ कि संसार में जो प्रकट हो रहा है गोपियों का जो प्रेम है वो इन आठों में से किसी की तरह नहीं है। तो त्यक्त लौकिका और गत ह्रिय शब्द बता रहा है कि वे क्या बोल रही हैं, क्या कह रही हैं, अब वहां लोक मर्यादा और लज्जा आदि का कोई प्रश्न नहीं। तो प्रेम में जैसे जैसे लीला की स्फुरणा हो रही है वही मुंह से निकल रहा है। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गत वाक काय मानस, जब मन शरीर और वचन केवल गोविंद में प्रविष्ट हो गया है तो जो कुछ भी वो बोल रही हैं अब स्वरूप शक्ति के दबाव में बोल रही हैं, घड़ाग्नि शक्ति के, वो स्वतंत्र नहीं रह गई। अतः यह कहा जाए कि अरे उद्धव के सामने इस तरह से नहीं बोलना चाहिए तो ये कहना ही गलत, वो दूसरा राज्य है, दूसरा धरातल है, बिल्कुल अलौकिक अप्राकृत। इस तरह से वे कृष्ण के प्रति उलाहना दे रहे हैं। और गायन्तः प्रिय कर्माणि रुदन्त्यश्च गतह्रियः तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य जानि कैशोर बाले, अपने प्रियतम के कर्मों को गायन्तः गाने लगी। उद्धव जी से बातचीत कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तब तक तो लगती है गाने, ये गोवर्धन धारण हो, दवानल पान हो, या काली दमन हो, रासलीला लगी गाने, उनके सौंदर्य के विषय में, करुणा के विषय में, माखन चोरी के विषय में, चीर हरण के विषय में, वो लगती है गाने। और उद्धव जी सब देख रहे हैं, ये अवाक रह करके देखने लगते हैं इनके प्रेम को, और उनको अद्भुत सुख मिल रहा है। प्रेम का विकार जब सामने प्रकट होता है उस महाभागवत के, तो अपने को परम धन्य मानने लगे। आगे यह वर्णन आएगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गोपियों की दशा को देख करके उद्धव को इतना सुख मिला, इतना सुख मिला और अपने को धन्य मानने लगे जैसा कभी कल्पना नहीं किए थे। तो इस तरह अयंत प्रिय कर्माणि और रुदंत्यश्च गतह्रियः, लाज तो चली ही गई थी, लगी रोने उच्च स्वर से, हे कृष्ण, हे प्रियतम, हे ब्रजनंदन, और कई कई तरह से गा गा करके उनके सामने रोने लगी। और रो रो करके कुछ कह रही हैं बीच बीच में, कृष्ण रो रो करके उद्धव जी से कह रही हैं, कृष्ण से कह रही हैं, अरे कैशोर बाल्य, जो इन दोनों के बीच में पौगंड अवस्था है भगवान की, तो सब समय भगवान लीला करते हैं, कर्म करते हैं, बचपन में बचपन जैसी लीला करते हैं। माँ जसोदा ने इन लीलाओं का बहुत आस्वादन किया है और किशोर अवस्था की लीलाओं को गोप सखा और गोपियां, और पौगंड अवस्था की लीला को बच्चों ने आस्वादन किया है। वो एक से पांच बरस की अवस्था को बाल्य अवस्था कहते हैं, और छह से दस को पौगंड, और ग्यारह से पंद्रह को किशोर अवस्था को। प्रिय कर्माणि, प्रिय कर्माणि का है अर्थ है प्रियस्य कृष्णस्य कर्माणि, अथवा प्रिय कर्माणि रास विहार आदि। गोपियों को रास विहार आदि बहुत प्रिय कर्म था भगवान का, तो प्रियतम की तो कोई भी लीला उन्हें प्रिय लग रही है, इसीलिए स्मरण आ रहा है और गा रही है। नेत्रों की ये दशा हो रही है, बरस रहे हैं रात दिन, लेकिन विरह की ज्वाला आग तनिक भी बुझ नहीं रही। श्री बिहारी जी ने लिखा है अपने ग्रंथ में, हे प्रियतम, आपके विरह से नेत्रों में वर्षा की झड़ी लगी है, लेकिन फिर भी विरह की आग बुझ नहीं रही। लाल तिहारे विरह की अग्नि अनूप अपार, सरसे बरसे नी रहूं मिटे न झरहूं झार। मिटे न झरहूं झार, झरहूं का अर्थ है झड़ी से, वर्षा की झड़ी से भी झार मतलब ज्वाला बुझ नहीं रही। और आश्चर्य है कि भीतर कलेजा में आग लगी है और आंख से पानी निकल रहा है। कविता में कहते हैं जब हृदय में आग लगी है तो आग लगने पर तो पानी उत्पन्न होगा नहीं, लेकिन जितनी आंच हृदय में है उतना ही पानी नेत्रों से निकल रहा है, और पानी इतना अधिक बरस रहा है फिर भी आग बुझ नहीं रही। इसका अर्थ यह है कि शोक से आंसू गिर रहा है और आंसू और तप्त ही कर रहा है, हृदय को शीतल नहीं कर रहा। तो बहुत विलाप करने लगी गोपियों के विलाप के कुछ पद सूरदास जी द्वारा लिखे गए हैं, बहुत लिखे गए हैं, उसमें से मैं कुछ यहाँ कहना चाहता हूँ। उधो अब जो कान्हन यही है, मतलब यदि कृष्ण अब नहीं आएंगे उद्धव जी तो क्या क्या हो जाएगा। उधो अब जो कान्हन यही है, उधो अब जो कान्हन यही है, जिए जानो यरु हृदय विचारो, जिए जानो यरु हृदय विचारो, हम नहीं तय दुख सही हैं। अब तक हम लोग बहुत दुख सही, लेकिन अब हम नहीं सहेंगे। अगर कृष्ण नहीं आएंगे तो आप दुख नहीं सहेंगे, और क्या करोगे तुम लोग। कहते हैं कि हम लोग मथुरा में अब सबके पास पत्र लिखेंगे कि ये कृष्ण वसुदेव के पुत्र नहीं है, ये नंद बाबा के बेटा है, ये हम लोगों के साथ ऐसे लीला किए, ये किए। अब चाहे भले बदनामी हो, मैं गत हिरिय पर इस पद को बोल रहा हूँ, लाज छोड़िए। कहने लगे यदि कृष्ण नहीं आएंगे तो अब उनको जबरदस्ती ब्रज में लाने के लिए हम लोग पत्र लिखेंगे, हमारे साथ इनका ये संबंध है, नंद बाबा के पुत्र हैं, वहाँ कोई ये मत समझो कि ये जादव है, ये गोप हैं, यहाँ के हैं, यहाँ के हैं, पूरा पंपलेट छाप करके फैलाएंगे। उधो अब जो कान्हन यही है, जिए जानो यरु हृदय विचारो। तो आप उनके दूत हैं तो सोच लीजिए खूब अच्छी तरह से, यदि आप में भी शक्ति हो उनको लाने की तो कहिए और जा करके लाइए, और नहीं तो हम लोगों ने अब निश्चय कर लिया। जिए जानो यरु हृदय विचारो, हम नहीं तो ये दुख सही है, हम इतना दुख अब नहीं सहेंगे। बुझो जाई कौन को ढोटा, काऊ तरे तब दई है। जा करके पूछिए आप कि वो किसके बेटा है, जा करके आप पूछिए जादवों के समाज में वहां कि वो किसके पुत्र, या कोई भी जा करके पूछेगा कि किसके बेटा है तो क्या उत्तर देंगे। क्या अपने पिता का भी नाम नहीं बताएंगे। तो इनको आशा है कि अगर वे कहेंगे कि मैं नंद बाबा का पुत्र हूं तो अपने घर चलो, यहां क्यों हो। ये सब लोग कहेंगे तो हम लोग सारा उनका उनका जो परिचय है वो मथुरा में खोल देंगे। बुझो जाई कवन को ढोटा, का उतर तब दई है, खायो खेलो संग हमारे, ताको कहा बनई है। हमारे संग खाए हैं, हमारा जूठ तक खाए हैं कई बार छिन छिन करके, और हमारे साथ खेले हैं, इसको ये क्या बना करके कहेंगे। क्या इस ये भी बात भूल जाएगी, गत हिरिया पर ये भाव है। हम लोग कहेंगे कि हमारे साथ नाचे हैं, खाए हैं, खेले हैं, झूला झूले हैं। खायो खेलो संग हमारे, ताको कहा बनई है, गोकुल मनी मथुरा के बासी, कौलो झूठो कहिए। गोकुल का हो करके मथुरा वासी वो कब तक कहलाएंगे, ये झूठ कितना दिन चलेगा। गोकुल मनी मथुरा के वासी कौलो झूठो कहिए, कब तक कहलाएंगे, कब तक वे कहेंगे कि हम मथुरा के। वो गोकुल के हैं, गोकुल के नहीं, गोकुल के मणि हैं, यहाँ के वे सर्वस्व हैं। ऐसा नहीं कि एक साधारण वासी यहाँ के हैं, वही यहाँ के सब कुछ हैं। तो गोकुल मणि मथुरा के वासी हैं, गोकुल मणि, और अपने को उद्घोष कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मथुरा के वासी, ये कितना दिन कहेंगे। गोकुल मणि मथुरा के वासी कौनो झूठो कही है, अब हम लिखी पठवन चाहती है पाती नहीं, अब हम लिखी पठवन चाहती है कहाँ पाती नहीं पई है। अब हम लिख करके भेजने वाली हैं पाती, और क्या वो पत्र उनको नहीं मिलेगा, हम लोग दूसरे के पास भी वो पत्र लिखने वाली है। उग्रसेन जी के पास पत्र लिखेंगे कि आप इसके फेरे में मत पड़िए, ये तो यहाँ का व्यक्ति है, उनको कैसे विश्वास हो गया कि ये जादव है। राजा उग्रसेन को पत्र लिखेंगे, और भी पत्र लिखेंगे, पत्र तो मिलेगा ही, और जा करके कह दीजिए एक बात, पत्र के अलावा कह रही हैं, इन गैयन चरिबो छाड़ियो है जो नहीं लाल चरई है। गायों ने तो प्रण कर लिया है कि जब तक वो कृष्ण लाल नहीं चराएंगे तब तक हम लोग चरेंगे नहीं, तो उन पर गोहत्या का पाप अब लगेगा, ये सारी गौवे मर जाएंगी। इन गैयन चरिबो छाड़ियो है जो नहीं लाल चरई है, एते पे नहीं मिलत सूर प्रभु फिर पाछे पछताई है। अगर इतने पर भी वे नहीं आते हैं तो फिर वे बहुत पश्चाताप करेंगे, ये सारी गौवे मर जाएंगी, हम भी मरेंगी, नंद बाबा जसोदा सब मरेंगे, वो फिर पछताएंगे, इसलिए जाकर कह दीजिए वो जल्दी आ जाए। उधो अब जो कान नहीं है, इन गैयन चरिबो छाड़ियो है जो नहीं लाल चरई है। एक दिन कृष्ण जिन गायों को चराए हैं वो कैसे दूसरे के द्वारा चर सकती। इन गैयन चरिबो छाड़ियो है जो नहीं लाल चरई है, एते पे नहीं मिलत सूर प्रभु फिर पाछे पछताई है। अब भाव बदला गोपीजनों का, तो अन्य आ गया बहुत अधिक, और अब रो रो करके उद्धव जी से कह रहे हैं कि आप जा करके ये कह दीजिए, क्या कहना है कृष्ण से वही बोल रही हैं, उद्धव शब्द इसमें नहीं बोल रही, कृष्ण से क्या कहना है।
फिर ब्रज बसहू गोकुल नाथ, फिर ब्रज बसहू गोकुल नाथ, फिर ब्रज बसहू गोकुल नाथ,
हे गोकुल के नाथ रक्षक, फिर से ब्रज में आ जाइए, फिर यहीं रहिए, आपको जो कुछ भी दुख हो रहा था ब्रज में रहते समय अब कुछ भी नहीं हो पाएगा, आप आ जाइए आ जाइए। गोकुलनाथ का अर्थ है गायों के रक्षक, और गोकुल का अर्थ इंद्रिय कुल भी होता है, हमारी आंखें अनाथ हो गई हैं, हमारे कान अनाथ हो गए हैं आपकी बोली सुने बिना, हमारी इंद्रियां अनाथ हो गई हैं, तो आप गोकुलनाथ हैं, गायों के और इंद्रियों को सुख देने वाले हैं। हे गोकुलनाथ फिर ब्रज बस हूँ, फिर आकर के ब्रज में रहिए किसी तरह से।
फिर ब्रज बस हूँ गोकुलनाथ, फिर ब्रज बस हूँ गोकुलनाथ, फिर ब्रज बस हूँ गोकुलनाथ।
अब जब आएंगे यहाँ रहने लगेंगे तो हम लोगों ने जो जो गलती किया है अब नहीं करेंगे।
बहुरिन तुमही जगाय पठवो, बहुरिन तुमही जगाय पठवो, गोधन में के साथ फिरी ब्रज बसहू गोकुलनाथ, फिरी ब्रज बसहू गोकुलनाथ।
ये रो रही हैं, गा रही हैं, तो कहें अब हम आपको भोर में नहीं जगाएंगी। माँ यशोदा से कह देंगे कि माँ इनको मत जगाओ, और आपको गायों के साथ अब वन में हम लोग नहीं भेजेंगे। आप सो नहीं पाते थे, इसी से आप वहाँ चले गए। ये बच्चे जो ब्रज के हैं, ये आधी रात को ही आकर के पुकारने लगते थे, कन्हैया कन्हैया चलो 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 चलो, क्योंकि कृष्ण को देखे बिना वो रह ही नहीं सकते थे। सच्चिदानंद घन परमानंद भगवान के साथ जो बच्चे खेलते थे, वो तो दो तीन घंटा रात में बिलग रह जाए वही बहुत काफी था उनके लिए। तो आधी रात को ही आकर के माँ यशोदा के दरवाजे पर कहते थे भोर हो गया भेजो भेजो कन्हैया को, और कृष्ण उनके प्रेम में पड़ करके चलने लगते थे। तो आज वो तो भगवान को आनंद आ रहा था इन लीलाओं से, लेकिन गोपियां ऐसा अनुभव कर रही हैं कि उनको सोने को नहीं मिला, इसी दुख से शायद ब्रज में नहीं आ रहे। तो इसलिए वे कहती हैं कि बहुरी ने तुम ही जगाए पठवाओ गोधनन के साथ, अब हम आपको जगा करके असमय में जगा करके गऊओं के पास पीछे पीछे हम लोग नहीं भेजेंगे, आप केवल रहिए बहुत आराम से रहिए यहाँ पर ब्रज। बर जौन माखन खात कब हूँ दई हो देन लुटाए, आप माखन जितना खाने की इच्छा करे खाइए, अब हम नहीं बरजेंगे। उद्धव जी जा करके उनको बता दीजिएगा, तो हम लोग कई बार माखन खाने से रोक लेती थी, नहीं खाने देती थी, तो बरजाओ न माखन खात कब हूँ, अब जितना मन करे माखन खाए नहीं बरजेंगे। यहाँ तक कि दहियों देन लुटाए, लुटाए देन दहियों, वो जितना लुटाना हो बानरों को किसी को लुटा रहे, हम नहीं रोकेंगे। ये सब लीलाएं याद आ रही हैं कि वे माखन खाते थे, बानरों को लुटाते थे, और हम लोग जाकर के डांटती तुम्हारे बाप का है दादा का है लुटा रहे हो, तुम अपने घर में जो कुछ करना है करो, हमारे घर का क्यों माखन बर्बाद कर रहे हो। तो श्री कृष्ण यही सुनने के लिए भी जाते थे करते थे, लेकिन श्री गोपी जन आज इसको बहुत बड़ा अपराध मान करके कहते हैं कि हम नहीं रोकेंगे कभी भी। बरजौन माखन खात कबहू दहियो देन लुटाए,
बरजौन माखन खात कबहू दहियो देन लुटाए।
लुटा देना हम लोग खुद ही स्वीकार करेंगे, हम लोग देंगे जितना माखन लुटाना चाहे वो लुटा ले, हम लोग देंगे उनको।
कबहून दई हों उराहनो जसुमती के आगे जाए,
हे उद्धव जी जाकर उनसे कह दीजिए कि अब हम लोग माँ यशोदा के पास कभी उलाहना नहीं ले जाएंगे, कभी उरहन नहीं देंगे, कभी कृष्ण के प्रति शिकायत नहीं करेंगे। बराबर रोज रोज कृष्ण के पास शिकायत करने जाती थी वो, कृष्ण की झूठी बात सुनने के लिए। वास्तव जब हम लोग उलाहना देती हैं तो कृष्ण क्या कहते हैं कैसे बोलते हैं उस लीला को देखे बिना नहीं रहा जाता था, तो अब उसी को अपराध मान रहे हैं। प्रेम की ऊंची तरंग में जब मधुर भाव से भरे हुए भक्त में भगवान का ऐश्वर्य उदित होता है तो दैन उत्पन्न हो जाता है। जैसे अर्जुन जब विराट रूप देखे तो लगे कहने कि मैं आपको सखा कहा था, जदुनंदन कहा था, आपको सारथी बनाया, बहुत भारी अपराध किया, ये किया, हमको क्षमा कीजिए, एक चाहे हजार, खाते समय सोते समय बैठते समय जो भी अपराध किया वो हमको माफ कीजिए। वो अपराध नहीं तो, तो भक्ति थी, भगवान उसी में आनंदित रहते थे। लेकिन आज कृष्ण के प्रति जो व्यवहार श्री गोपी जनों ने किया है उसको अपराध मान रही है। कहते हम कभी माता यशोदा को उलाहना देने नहीं जाएंगे, आप जितना माखन खाना हो खाइए लुटाइए, अब कह दीजिए ये बात कि अब गोपियां आपको कोई उलाहना नहीं देंगे, चलिए। तो क्या वे इस कारण से नहीं आ रहे थे? अब गोपी जनों के मन में है कि इसी कारण से वे नहीं आ रहे, इसीलिए निवेदन कर रही हैं।
बरजौन माखन खात कबहू दई हौ देन लुटाय कबहू न दई हौ राहन जसुमति के आगे जाय फिर ब्रज बसहु गोकुलनाथ फिर ब्रज बसहु गोकुलनाथ दौरी दामन देऊंगी लकुटीन जसुमति पान।
अब हम लोग माँ जसोदा के हाथ में रस्सी नहीं देंगे। जब रस्सी घट रही थी दो अंगुल तो माँ जसोदा दौड़ दौड़ करके मांग रही थी गोपियों से, तो गोपियों ने दिया था रस्सी दिया था अपने घर से। तो शायद हमारे प्रियतम को ये याद होगा कि इन लोगों ने भी रस्सी दिया था बांधने के लिए मुझे, तो अब कह रहे हैं कि हम फिर अब रस्सी नहीं देंगे माँ जसोदा को और छड़ी नहीं देंगे उनके हाथ में।
दौरी दामन देऊंगी लकुटीन जसुमति पान।
माँ जसोदा ने कहा था बांध के, वो किसी के यहाँ जाती नहीं थी, कहती थी जाओ दौड़ कर रस्सी लाओ। रस्सी जब घट जाती थी तो गोपियों को इशारा करती थी, वो तो रानी थी ब्रज की, कहती दौड़ो अमुक नाम रख करके दौड़ो लाओ रस्सी। वो क्या करे, वो तो रानी कह रही है तो, और अपराध किए भी हैं तो इसलिए दौड़ करके रस्सी लाती। आज वह अपराध में गिन रही है उस कर्म को।
दौरी दामन देऊंगी,
दाम का अर्थ है रस्सी।
दौरी दामन देऊंगी लकुटीन जसुमति पान,
और न तो माँ जसोदा के हाथ में छड़ी देंगी। कहते कल कभी छड़ी ही दिया था कि छड़ी दिखाएगी तो ये क्या कहते हैं। तो हम अब माँ जसोदा के हाथ में छड़ी नहीं देंगी, दौड़ करके रस्सी नहीं देंगी।
चोरी न देवु उघारी फिरी अवगुण न कही हाँ आन।
और उद्धव जी बता दीजिएगा प्रियतम से कि आप वो चाहे जो भी चोरी करना हो करें, अब हम लोग उनकी चोरी को बाहर नहीं कहेंगे। जसोदा के सामने तो कहना ही नहीं है, किसी के साथ किसी के पास हम लोग उनकी चोरी नहीं कहेंगे। अवगुण न कही हो आन, उनका कोई चोरी ही नहीं, कोई भी अवगुण हम लोग किसी से नहीं कहेंगे। हम लोगों ने उनको चोर चोर कह करके हल्ला किया, शायद इसी बदनामी से नहीं आ रहे हैं। किसी के बेइज्जती कहीं की जाए, वो आदमी वहां उस स्थान पर जाएगा, और वो भी साधारण खाने की चीज को लेकर के चोर चोर चारों तरफ से। तो अपने आप प्रेम के कारण दैन में ऐसा सोच रहे हैं कि कृष्ण इन्हीं सब कारणों से ब्रज में नहीं आ रहे हैं।
तो दौरी दामन देऊंगी लकुटीन जसुमति पान।
पान माने हाथ, जसुमति के हाथ में अब हम लोग छड़ी नहीं देंगे, रस्सी नहीं देंगे, चाहे कुछ भी करें।
चोरी न देऊं उघारी,
उघारी का अर्थ है उनके चोरी का भेद हम नहीं खोलेंगे, अब किसी से नहीं कहेंगे।
अवगुण न कही हाँ आन,
और उनका अवगुण किसी से नहीं कहेंगे। और फिर कभी कभी हट करती थी, मान कर जाती थी गोपियां, विशेष करके राधा रानी, तो कहती हैं
करी हौन तुम सो मान हठी, हठी हौन मांगत दान।
हे प्रियतम, हे ब्रजनंदन, हम आपसे अब कभी मान नहीं करेंगे, आपसे कभी मान मैं नहीं करूंगी, मैं रूठूंगी नहीं। और आप जब दान मांगेंगे दान घाटी में गोवर्धन जी में, तो हम हठ नहीं करेंगे कि नहीं देंगे। आप एक बार मांगेंगे तभी दे, बिना मांगे हम आपको दे देंगे अब दान, हम अब नकारेंगे नहीं।
करी हौन तुम सो मान हठी, हठी हौन मांगत दान।
हम आपसे मान नहीं करेंगे कभी, और न दान मांगने पर हठ करेंगे, जरूर दे देंगे।
कही हौन मृदु मुरली बजावन करन तुम सौगान।
और हम अब कभी भी आपको बांसुरी बजाने के लिए नहीं कहेंगे, बांसुरी बजाने में मेहनत पड़ती थी, सांस फूलती थी, इसीलिए आप नहीं आ रहे हैं। हम लोगों के कहने से कई बार बांसुरी बजा रहे, तो हम अब आपको बांसुरी बजाने के लिए नहीं कहेंगे, आपको गीत गाने के लिए नहीं कहेंगे।
करी कही हौन चरणन देन जावक,
अब मैं अपने चरण में मेहंदी लगाने के लिए उनको कभी नहीं कहूंगी। राधा रानी कह रही हूँ, मैं उनसे श्रृंगार करवाती थी तो मैं कभी भी उनको अपने चरण में जावक लगाने के लिए नहीं कहूंगी, मेहंदी आदि लगाने के लिए नहीं कहूंगी। गुहन बेनी फूल और अपने जूड़ा में अपने बालों में मैं कभी फूल गुंथने के लिए उनको नहीं कहूंगी। कही हौन चरणन देन जावक गुहन बेनी फूल, कही हौन करन सिंगार बट तर बसन जमुना कूल। मैं अपना श्रृंगार करने के लिए कभी उनको नहीं कहूंगी। आज भी श्रृंगार बट है जमुना जी में, वृंदावन में श्रृंगार बट, तो बट के निकट बट के तले में मैं कभी उनको श्रृंगार करने के लिए नहीं कहूंगी। बसन जमुना को के निकट रह करके और श्रृंगार बट के नीचे मैं अपना श्रृंगार करने के लिए उनको नहीं कहूंगी। आप जा करके कह दीजिएगा जिससे वे आ जाए, सब जगह लगेगा फेरी ब्रज बसहूं गोकुलनाथ, फेरी ब्रज बसहूं गोकुलनाथ, फेरी ब्रज करी हौन तुम सौ मान हठी हठी हौन मांगत दान, कही हौन मृदु मुरली बजावन करन तुम सो गान, फिरी ब्रज बसहूं गोकुलनाथ, फिरी ब्रज बसहूं गोकुलनाथ, कही हौन चरणन देन जावक गुहन बेनी फूल, कही हौन चरणन देन जावक गुहन बेनी फूल, कही हौन करन सिंगार बट तर बसन जमुना कुल, फिरी ब्रज बसहूं गोकुलनाथ, फिरी ब्रज बसहूं गोकुलनाथ, भुज भूषण जुत कंध धरि कै रास नृत्यन कराऊं। फिर मैं अपनी भुजा को आपके कंधे पर नहीं रखूंगी कभी भी। लगता है कि यह पद श्रीमती राधा रानी का ही है मुख्य रूप से। हमारी भुजा में चूड़ियां रहती हैं, कंकड़ रहते हैं, आपके कोमल कंधे पर वो गड़ते होंगे, मैं कभी अपना बाह आपके कंधे पर नहीं रखूंगी। भुज भुज भूषण जुत कंध धरी के रास नृत्य न कराम, मैं आपसे नाचने के लिए नहीं कहूंगी, आपसे रास नृत्य नहीं कराऊंगी, आपके कंधे पर भुजा नहीं रखूंगी। आप हमारे कंधे पर भुजा रखिएगा, आपके कंधे पर मैं भुजा नहीं रखूंगी। अब राधा रानी संकेत गांव जहां है संकेत वन में बैठ करके श्री ललिता जी या विशाखा आदि में से किसी को भेजती थी कि जाओ प्रियतम को बुला लाओ, तो रात में आने में कांटे पैर में लगने का भय ऐसा वो सब लोक लज्जा भी कई, तो कहती हैं अब नहीं बुलाऊंगी, मैं दुख सह लूंगी, लेकिन अब उनको कह देना कि मैं इस तरह से उनको नहीं बुलाऊंगी। भुज भूषण जुत कंध धरि के रास नृत्य न कराऊं, हौं संकेत निकुंज बसी के दूति मुख न बुलाऊं, फिरी ब्रज बसहूं गोकुलनाथ, फिरी ब्रज बसहूं गोकुलनाथ, एक बार जुदरस दिखवहूं प्रीति पंथ बसाए, चंवर करऊं चढ़ाए आसन नयन अंग लगाय, फिरी ब्रज बसहूं गोकुलनाथ। एक बार आइए आप ब्रज में प्रीति पंथ बसाए, मैं प्रीति के पंथ पर आपको बसा करके और आपको चमर झुलाऊंगी, आसन पर बैठा करके आपको पंखा झलूंगी। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं आपकी सेवा नहीं की, नयन अंग लगाए मैं अपना शरीर और नेत्र लगा करके, मतलब आपको अपने नयन में रखूंगी, आपका आपकी सुरक्षा करूंगी, आपकी सेवा करूंगी। देहू दर्शन नंद नंदन मिलन ही की आस, सूर प्रभु की कुंवर छवि को मरत लोचन प्यास, फिरी ब्रज बसहू गोकुलनाथ, फिरी ब्रज बसहू गोकुलनाथ, फिरी ब्रज बसहू गोकुलनाथ। इस तरह से गोपियां रो रही हैं कह कह करके। जिन लीलाओं में भगवान सर्वाधिक आनंद लेते थे उनको ही अपराध मान रही हैं और कहते हैं कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब ऐसा नहीं करेंगे, अब जाकर कह दीजिएगा। शायद इन्हीं सब कष्टों का स्मरण करके वे नहीं आ रहे हैं, इसलिए आप जाकर बताइए कि अब सब हम नहीं करेंगे। अद्भुत है सूरदास जी का पद। सारी लीलाएं आंखों के सामने नाच रहे, स्वाभाविक जो गोपीजनों के मन में उत्पन्न हो सकता है वही बात लिख रहे हैं। वृंदावन इस समय बहुत दुखदाई हो गया है कृष्ण के विरह में, जो भी है उल्टा लग रहा है, कोयल की बोली काल जैसी लग रही है, चंद्रमा जहर उगल रहा है और शीतल मंद समीर बिल्कुल विष के माने सांप के सांस की तरह लग रहा है। तो कोई कोई कहते उद्धव जा करके कह दो कि वे यहाँ न आवे, इस समय यहाँ न आवे, इस समय यहाँ विकराल दशा हो गई है, जब तक ब्रज की दशा नहीं सुधर जाती है प्रियतम यहाँ न आवे, इनको बहुत दुख होगा। तो उसको कहती हूँ उधो इतनी जाय कहो, उधो इतनी जाय कहो, सब बल्लभी कहत हरिशो ये दिन मधुपुरी रहो। यहाँ पर सभी गोपियाँ कह रहे हैं उद्धव जी कि इस समय हरि मधुपुरी में ही रहे, यहाँ न आवे। सब बल्लभी कहत हरिशो ये दिन मधुपुरी रहो, क्यों ब्रज में आने में क्या दुख है? तो कहती हैं उद्धव जी से, तुम देखते आप देखते हैं उद्धव जी ना, आज काल तुम हूँ देखत हो तपत तरणी समचंद, आप भी देख रहे हैं कि चंद्रमा तरणी मतलब सूरज की तरह तप्त हो रहा है, विरह में चंद्रमा की किरणें बहुत दाहक होती हैं विरहिणी को, आप तो देख ही रहे हैं उद्धव जी। आज काल तुम हूँ देखत हो, आज काल तुम हूँ देखत हो तपत तरणी समचंद, चंद्रमा सूर्य की तरह तप्त हो रहा है। सुंदर श्याम परम कोमल तन क्यों सही है नंद नंद। विराट के समय हम लोगों के साथ बिहार करते थे राज बिहार, उनका बहुत सुकोमल शरीर है, श्याम सुंदर है, वे कैसे इस ताप को सह पाएगा, इसलिए कह दो अभी वो उधर रहे, अभी वो मथुरा में ही रहे। सुंदर श्याम परम कोमल तन क्यों सही है नंद नंद। नंद महाराज के लाडले परम सुकोमल शरीर वाले हैं, कैसे इस ताप को सह पाएंगे, दिन भर तो घाम लगता ही है, रात के समय चंद्रमा भी दूसरे सूरज का काम कर रहा है, इसलिए कह देना यहाँ न आवे। प्रश्न क्या मथुरा में चंद्रमा शीतलता देता है? हाँ, वहाँ शीतलता देता होगा तभी तो नहीं आ रहे हैं, यहाँ दाह है, कह दो माता में। मधुर मोर पिक परुष बचन यति बन उप बन चढ़ी बोलत। जब वे ब्रज में थे हम लोगों के साथ तो उस समय यहाँ के मोर और कोयल भौरे आदि बहुत सुंदर बोलते थे, उनकी बोली बहुत सुंदर लगती थी, लेकिन आज ये लोग बहुत कठोर बोल रहे हैं, इनकी बोली बहुत दुखद लग रही है। मधुर मोर पिक परुष बचन यति बन उप बन चढ़ी बोलत। और जो गौए हैं ब्रज की और बैल हैं, जो पशु हैं जिनको उन्होंने चराया, उस समय तो गाय बैल जैसे लग रहे थे, लेकिन अब सिंह और बाघ की तरह ही लग रहे हैं गली में घूमते हुए। सिंह ब्रिकन सम गाय बच्छ ब्रज बीथिन बीथिन डोलत, और वो भी घूम रहे हैं गांव में, वन में चरने नहीं जा रहे हैं, सिंह की तरह बाघ की तरह भयानक लग रहे हैं। मतलब इनको देख करके इतना दुख होता है कि एक दिन इनको कृष्ण चराते थे, सुखी थे, और आज ऐसे है, तो हमको तो ये बड़े भयावह लग रहे हैं, इसलिए उनको कह दो माता में। सिंह ब्रिकन सम गाय बच्छ ब्रज बीथिन बीथिन डोलत, आसन असन बसन विषय ही समभूषण भवन पहार। आसन असन कहीं सज्जा जो है, इस समय पलंग आदि और भोजन और कपड़ा ये सब विष जैसे लग रहे हैं। तो प्रियतम यहाँ आएंगे तो कहाँ बैठेंगे, सब तो जहर जैसा लग रहा है, विष जैसा भयानक लग रहा है, क्या खाएंगे। तो आसन बसन आसन असन बसन विष अहि समभूषण भवन पार, और भूषण हे उद्धव ये गहने सांप जैसे लग रहे हैं, और भवन जो है वो भीषण पहाड़ जैसा लग रहा है, पहाड़ की गुफा जैसा जिसमें भयानक जीव रहते हैं। तो जित तित फिरत दुसह द्रुम द्रुम प्रतिधनुष लिए शतमार, और जहां तहां प्रत्येक वृक्ष पर जब फूल और फलों से लदा हुआ है, ऐसा लगता है कि सैकड़ों कामदेव धनुष चढ़ा करके घूम रहा है इस ब्रज में, इसीलिए प्रियतम को बचाओ, आने मत दो यहाँ। मतलब भीतरी भाव है कि जरूर बुला लाओ, तुरंत लाओ, तुरंत लाओ, उनके बिना ही ये सब दशा है, उनके आते ही सब ठीक हो जाएगी। लेकिन उल्टी भाषा है, ये भाव में वो वही बोल रही है कि यहाँ कामदेव धनुष बाण लेकर के हजार सैकड़ों कामदेव एक एक वृक्ष पर धनुष बाण लेकर के खड़ा है और मारने के लिए तैयार, इसलिए उनको यहाँ मत आने दो। तुम तो परम साधु को मल मन जानत हो सबरी, हे उद्धव जी आप तो परम साधु हैं, आप सुकुमार मन वाले हैं, कोमल मन वाले हैं, सब रीति जानते हैं, इसलिए सूर श्याम को क्यों बोले ब्रज बिन तारे यह ईत ईत भीत जन प्रजा दुखार, यह दुर्दशा यह बुरा समय बिना बिताए कृष्ण को क्यों यहाँ बुलाया जाए, कोई जरूरत नहीं, ये सब समय बीत जाएगा, अच्छा दिन आएगा तब उनको कह दीजिएगा मथुरा से आने के लिए। सूर श्याम को क्यों बोले ब्रज बिन तारे यह ईत, उधो इतनी जाय कहो, ये कह दो माता में। तो इस तरह से अद्भुत अलौकिक और असंगत बातें गोपी जन उद्धव जी के सामने बोल रहे हैं।
कही है विपतिया उद्धव जी, कही है विपतिया उद्धव जी, कान्हा से हमार हो कब यहाँ ब्रज में नंद बाबा के कुमार हो, कब यहाँ ब्रज में नंद बाबा के कुमार हो, कही है विपतिया उद्धव जी कान्हा से हमार हो, कब यहाँ ब्रज में नंद बाबा के कुमार हो, कब यहाँ ब्रज में नंद बाबा के कुमार हो, कही है विपतिया उद्धव जी कान्हा से हमार हो, कब यहाँ ब्रज में नंद बाबा के कुमार हो, क कब यही है ब्रज में नंद बाबा के कुमार हो। जब से गई ले मोहन मथुरा नगरिया, जब से गई ले मोहन मथुरा नगरिया, झर झर बरसे नैन हो, झर झर बरसे नैन चारो पहरिया, तकला पर चारू ओर, तकला पर चारू ओर लौकता अन्हार हो। कब यही है ब्रज में नंद बाबा के कुमार हो, कब यही है ब्रज में नंद बाबा के कुमार हो। कही है विपतिया बुधो जी कान्हा से हमार हो, कब आई है ब्रज में नंद बाबा के कुमार हो, कब आई है ब्रज में नंद बाबा के कुमार हो। दिन नाही चैन नींद आवे नारतिया, दिन नाही चैन नींद आवे नारतिया, नाही भुलाला कब हूँ हो, नाही भुलाला कब हूँ श्याम के सुरतिया, हमनी के नैया के उहे पतवार हो। कब यही है ब्रज में नंद बाबा के कुमार हो, कब यही है ब्रज में नंद बाबा के कुमार हो। कही है विपतिया बुधो जी कान्हा से हमार हो, कब यही है ब्रज में नंद बाबा के कुमार हो, कब यही है ब्रज में नंद बाबा के कुमार हो। गैला लगा के गरे प्रेम के रसरिया, गैला लगा के गरे प्रेम के रसरिया, लेके जाई हाँ से यापन, लेके जाई हाँ से यापन ज्ञान की गठरिया, आईब फिर ब्रज में करके, आईब फिर ब्रज में करके गैलाऊ करार हो। कब यही है ब्रज में नंद बाबा के कुमार हो, कही है विपतिया उधो जी कान्हा से हमार हो, कब यही है ब्रज में नंद बाबा के कुमार हो, कब यही है ब्रज में नंद बाबा के कुमार हो। रोवे ब्रज नार भर के आँखिया में लोर हो, रोवे ब्रज नार भर के रखिया में लोर हो आईहा जरूर ब्रज में श्याम चीत चोर हो आई है जरूर ब्रज में श्याम चीत चोर हो मदन मुरारी हमरो मदन मुरारी हमरो प्राण के आधार हो सब यही है ब्रज में नंद बाबा के कुमार हो कही हिपतिया बुधो जी कान्हा से हमार हो सब यही है ब्रज में नंद बाबा के कुमार हो सब यही है ब्रज में नंद बाबा के कुमार हो सब यही है ब्रज में नंद बाबा के कुमार हो
हरे कृष्णा।